जी आज हमारा रैप्चर के स्टडी के ऊपर हमारा पांचवा ये स्टडी है, फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट तक हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद में जो कलीसिया उठाई जाएगी उनकी हमने क्वालिफिकेशंस देखी, और अब हम आज खुदावंद के बंदे हमारे अंकल इकबाल और डॉली आंटी मौजूद हैं और वो हमें स्टडी करवा रहे हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे कि जो लोग उठाए गए, और ये हमने पार्ट फोर में देखा, आज हम देख रहे हैं जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो लोग नहीं उठाए गए पीछे उनके हवाले से, और फिर आगे किस तरीके से इसका तसलसल चलेगा। जी अंकल जी,
सबको सलाम। बड़े अच्छे तरीके से हमने देख लिया कि सवाल ये है कि जो लोग रैप्चर में नहीं उठाए गए तो उनका क्या बनेगा, क्योंकि जाहिर है कि जो एक क्वालिफिकेशन या उन्होंने उस को क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, तो वो तो नीचे रह गए और चर्च तो ऊपर चला। चर्च का वो हिस्सा जो तैयार था अब्रानियों 9 की 28 के मुताबिक वो तो चला गया ऊपर, लेकिन वो उन लोगों का क्या होगा जो नीचे हैं। अब इसमें दो किस्म के लोग हमें नज़र आ रहे हैं, एक नामी मसीही हैं जो यीशु के मुतल्लिक जानते हैं, तो एक जो हैं जिन्होंने वाकई ही सच्ची तौबा की है और वो बैप्टिज्म लिया और निजात जिनको मिल गई है, लेकिन उन्होंने उस मेयार को मेंटेन नहीं कर सके, तो वो लोग भी नीचे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी ज़मीन पे गुनाहगार भी, तो ये एक दो तीन कैटेगरीज हमें नज़र आ रही हैं नीचे। लेकिन जूं ही चर्च उठा लिया जाएगा, जैसे कि हमने देखा था कि पहला थसलनीकियों, दूसरा थसलनीकियों का खत और उसका 2:6-7 आयत के मुताबिक, ठीक है, वो तो ऊपर अपना उनका एक अलग इवेंट शुरू हो जाएंगे, तो उनके लिए तो पहली चीज़ जजमेंट होनी है बिलीवर्स की, ठीक है। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे मुखालफ मसीह के तकरीबन 7 साल उसको दिए जाएंगे, क्योंकि डैनियल में हमने इसको भी थोड़ा सा देखा था कि 3.5 सालों को बयान किया गया है जिसको ट्रिबुलेशन या मुसीबतें, और आखिरी 3.5 साल जो हैं उसको ग्रेट ट्रिबुलेशन के नाम से दिया गया है। और ये इस दौर में जो नीचे रह गए होंगे उनको, जो तो मसीही हैं, जो उस वक्त कहेंगे वो हम तो तैयार नहीं थे, लेकिन वो 144,000 ज्यूज जो के कंवारे होंगे, है ना, उनके साथ और प्लस 2 विटनेसेस जो हैं उनको भी हम अलग स्टडी करेंगे, जिसमें एलिया और हनूक, इसमें थोड़ी सी कंट्रावर्सी है कि कई कहते हैं मोसेस, तो ये बाद में देखेंगे। उनके साथ जो तो बॉर्न अगेन होंगे वो उस टीम में मिलके इनके साथ एवेंजेलिज्म करेंगे, तो जब हम इसमें ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन में जाएंगे तो फिर ये मोटा ये फिर डिटेल से इसको स्टडी कर लेंगे। अच्छा,
एक सवाल है कि वो जो लोग तीन किस्म के लोग आपने कहा कि भाई एक तो जिन्होंने जो तैयार नहीं थे, और फिर जो उस मियार को कायम नहीं रख सके, और एक जिन्होंने कबूल ही नहीं था किया, जिन्होंने मियार कायम नहीं रखा उनको हम वो बरगश्ता या बैकस्लाइडर्स कह सकते हैं, कि वो लोग होंगे।
जाहिर है कि बाइबल में तो सीधी बात है कि वो अगर कलाम के मुताबिक चलते तो उठा लिए जाते, लिहाजा वो स्लाइड बैक या बैक स्लाइडर आप कह लें वो हो सकते हैं, तो ये जब हम एक और टॉपिक देख लेंगे कि बैकस्लाइडर्स जो हैं ये मसीही लोग जो हैं, जिस तरह हमने अब्रानियों का खत उसका इसमें भी कैटेगरीज हैं, बैकस्लाइडर्स में भी कैटेगरीज हैं, कई तो फिर बच सकते हैं, कई नहीं बच सकते, ठीक है। जिस तरह अब्रानियों 6:4 से ऑनवर्ड देख लें आप, और भी बहुत वाले। तो अब ये लोग जो मुखालफ मसीह के दौर में होंगे, पहले 3.5 सालों में ये खूब एवेंजलिज्म करेंगे, 2 गवाह, 2 विटनेसेस और 144,000 ज्यूज के साथ मिलके, तो बाकियों को कन्वर्ट करेंगे। और हम देख रहे हैं कि फिर ये जूं ही 3.5 साल ख़त्म होने को होंगे, तो फिर एंटी क्राइस्ट जो है वो इनके पीछे पड़ेगा, और 144,000 यानी 144,000 यहूदियों को मारने के लिए, लेकिन उनका भी रैप्चर हो जाएगा, वो बच जाएंगे, लेकिन बाकी जो लोग होंगे मसीही लोग होंगे वो कत्ल करके तो शहीद होके तो ऊपर जाएं।
144,000 ये सब शहीद होंगे?
नहीं, इनको इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये यीशु के खास बॉडी गार्ड्स कहलाते हैं। इसको भी इसका मतलब है कि हम 144,000 यहूदी जो है ना, इनकी भी अलग एक स्टडी कर लेंगे, क्योंकि ये 12 कबीलों में से 12-12 ले लिए जाएंगे मुकाशवा में।
तो ये जो एवेंजेलिज्म कर रहे हैं ये वो लोग होंगे जो मसीह को जानते थे लेकिन तैयार नहीं थे जाने के लिए।
हाँ जी, उनके साथ
ये वो एवेंजेलिज्म कर रहे हैं,
या उनके साथ के जी आप तो हमें पीछे नहीं रहना।
अच्छा,
तो फिर ये जान देने तक भी फिर इनको भी कलाम है कि वफादार रह, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो एनीवे, ये इसमें कोई और बात है, क्योंकि 3.5 सालों के बाद बड़े मुसीबतें होंगी। लेकिन मत्ती 24 बाब और उसकी 22 आयत के मुताबिक जो आखिरी 3.5 साल जिसको बड़ी मुसीबतों का दौर या उसको कह लें ट्रिबुलेशन का जो पीरियड होगा वो कम कर दिया जाएगा ज्यूज के लिए, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है मत्ती 24:22 में कि बर्गजीदों के लिए ये दिन कम किए जाएंगे। तो बर्गजीदे बेसिकली यहाँ यूज हुआ है उनके लिए, ज्यूज के लिए, ठीक है। तो फिर ऊपर क्या हो रहा होगा, अब इसमें पहले तो इसको थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो इसको देख लें, फिर इनकी फर्दर स्टडी हम कर सकते हैं। क्यों सर
जी?
ठीक,
सो प्लीज। कलीसिया के उठाए जाने के बाद वो ट्रिबुलेशन का दौर शुरू हो गया,
फौरन ही एंटी क्राइस्ट आते ही पीरियड ऑन
कलीसिया।
जो ही कलीसिया उठाई गई, क्योंकि जो पहले हमने स्टडी में जिक्र किया था कि अब तक कौन रोके हुए है एंटी क्राइस्ट को जाहिर होने से, वो चर्च है,
वो
कलीसिया है,
वो कलीसिया।
कई दफा लोग गलतुलाम कहते हैं कि खुदा का पाक रूह है जो उसको रोके हुए है,
क्योंकि आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि पाक रूह जमीन पे ही होगा
जी,
क्योंकि अभी इसमें कलाम के मुताबिक लोगों ने तौबा भी करनी है, तो पाक रूह की
हदायत
के बगैर कोई
तौबा नहीं,
यीशु को खुदावंद कह ही नहीं सकता, उसका काम है कायल करना,
पर रोकने वाला पाक रू नहीं है, पाक वो कलीसिया
जी, वो हमने देख लिया जी
जी।
तो अब ऐसा है कि हम इसमें फिर आगे बढ़े या
जी, ये जो 2 गवाह हैं ये इनको भी कत्ल कर दिया जाएगा, और फिर इनको इनकी लाशें जो हैं वो लटकाई जाएंगी
जी, मुकाशवा 11 बाप में ये पूरा डिटेल।
हाँ जी,
फिर हाँ जी, लटकाई नहीं जाएंगी,
वो फेंक दी जाएंगी,
पड़ी रहेंगी,
हाँ,
और पूरी दुनिया देखेगी
जी,
और फिर वो
3.5 दिनों के बाद
फिर ये दो
होगा हनुक और
एलिया। अगर हम इसको रेफरेंस वाइज देख लें, कि अभी हम जो कलीसिया उठाई गई है तो हम इसको दो हिस्सों में देख रहे हैं। एक तो वो है कि जो आसमान पर कलीसिया मसीह खुदावंद के साथ है, जो कुछ उधर हो रहा है, और जो नीचे ज़मीन पे जो नक्शा चल रहा है उस टाइमलाइन में, तो वहाँ पे हमने देखा कि मुखालफ मसीह ज़ाहिर हो गया,
हो गया, आ गया।
और उसके बाद जो है वहाँ पर जो पहला जो दौर जिसको कहा गया है
साढ़े तीन साल
का, जिसको ट्रिबुलेशन हम कहते हैं, इसमें जो मुखालफ मसीह ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ, तो वो सबसे पहले तो वो एक पीस अकॉर्ड करता है
जी, एक पीस ट्रीटी करेगा ज्यूज के साथ।
अच्छा। जी,
जिसका डैनियल में जिक्र है, इसलिए हम कह रहे थे कि वो ये करेगा कि सब कुछ ज्यूज के पास है, सिर्फ उनकी टेंपल या हैकल नहीं है। तो वो इजाजत दिलाएगा इर्द गिर्द के इस्लामिक कंट्रीज से, तो वो हैकल बनाई जाएगी। ठीक है, तो जब वो हैकल बना दी जाएगी तो उसको अब ये आते ही उसने ये करना है। अब वो 1260 दिन जो हैं, वो ज्यूज कहते हैं हमें साढ़े तीन साल, 1260 को 360 डेज का ईयर है ज्यूज, हमारा जॉर्जियन
उसके मतलब
जी,
हमारा 365
है, उनका 360 है। बाइबल में जो भी जो कैलकुलेशन है वो 360 से करेंगे तो ठीक होगी। ठीक है, तो उस दरमियान जब हैकल ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, काफ़ी अरसे की, लेकिन उसको पाक करना जो भी तरीक़ाकार है, क्योंकि लावी तैयार हो गए हैं, सब उन्होंने कर लिया है, यहाँ तक कि वो कुर्बानी के लिए वो जो ख़ास रेड
सुर्ख बच्चिया जो है जिसका
वो भी है, वो
रेड हीफर
है,
रेड हीफर
वो भी है, अभी ऐसा ऐसा पहुंचाई जा रही है। तो होगा ये कि जो ही वो वहां हैकल में अपना शुरू करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा है कि और डैनियल ने भी बताया कि तुम उस मकरूह चीज को उस पाक मकाम में खड़े हुए जब देखो, मींस के हैकले सुलेमानी में खड़े हुए देखो, जो तो समझ जाना उस वक्त ये एंटी क्राइस्ट अपना हेडक्वार्टर उठा के तो ठा करते यरूशलम में पहुंच जाएगा। ये सारी हम डिटेलें बकायदा उसे करेंगे, चूंकि अभी हम इसका मकरूह चीज मुखालफ मसीह है, एंटी क्राइस्ट। लेकिन बाइबल में जो पेशन गोइयां हैं वो तीन दफा रिपीट भी हुई हैं, एक दफा हैकल में सुअर की कुर्बानी भी हो गई थी। सो ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे देखेंगे। सो अब जो हुई थी, तो यीशु तो आया 2000 साल पहले, तो फिर यीशु वो क्यों कह रहा है कि जब तुम हैकल में उसको देखो, तो हम इसको पीरियड से हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फिर उधर जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से ये आखिरी साढ़े तीन सालों की बात हो, यानी आखिरी पीरियड में होगी ये। ठीक है, और जो ही ये एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, सो रेवलेशन मुकाशवा और उसका छठे बाब में पहली मोर खुल जाएगी और चार घोड़ों का जिक्र, तो ये हम इस तरह
मुकाशवा कौन से बाब,
छठे बाब में, और यहाँ फिर वो एक सफ़ेद घोड़े पे मुखालफ मसीह जो है उसको ये इख्तियार दिया जाएगा खुदा की तरफ से कि वो जाए मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स को, ये वो उसका काम ये होगा कि इसराइल के खिलाफ आर्मागेडन या हर मजदून की जंग के लिए वो तैयारी करा रहे हैं। सो एनीवे, तो ये उसके असाइनमेंट है जो बाइबल में बताए गए हैं। अच्छा, तो मतलब ये कहने का कि ये पूरा एज पर बाइबल के कैलेंडर से, क्योंकि क्लॉक 1948 में ये ऑन हो गई है खुदा की
जी,
क्योंकि ये नक्शे में आ गया था इसराइल।
इन अदर वर्ड्स, यरूशलम से ही क्लॉक शुरू होता है।
जी, क्योंकि जो
खुदा का टाइम टेबल यरूशलम के साथ चलता है, दुनिया के साथ नहीं।
क्या बात है। और चाबी वही है, जो कुछ दुनिया में होने वाला होता है ना, वो वहीं से शुरू होता है। सो अब हम चलो, ये एक जर्नली हो गई है, है ना, इसमें हमने आउटलाइन देख ली है। तो फिर ये आगे हम ऐसा ऐसा पढ़ेंगे कि सील्स, फिर ट्रम्पट्स पढ़ेंगे, फिर अफसोस देखे जाएंगे, सेवन सेवन सेवन। तो ये इसका तल्लक सारा जो है, देखें रेवलेशन चैप्टर 4 में चर्च उठा लिया गया, 4 के बाद 19 के मिड तक चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कलीसिया का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये वो सारा दौर होगा जिसमें ट्रंप, जिसमें आप कह लें सील्स
ट्रंपेट्स
अफसोस वॉज, प्याले, 7 प्याले, ये आखिरी, ये बड़ी आखिरी जजमेंट होगी जो फेंकी जाएगी। उसके बाद फिर जीसस की फिजिकल लैंडिंग की तरफ हम जाएंगे, जब जकरिया 14 के मुताबिक आधा शहर ले लिया जाएगा है, ये यरूशलम का, औरतें बेहुरमत होंगी। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह 7 पुराने और नए ऐदनामे के ईमानदार और पाक फरिश्ते जैतून के पहाड़ पर जू ही लैंड करेंगे, जैतून का पहाड़ दो हिस्सों में बट जाएगा, यानी साउथ नॉर्थ में, और ईस्ट टू वेस्ट 200 मील 1600 फरलांग एक वैली जो यूसुफत की वैली है वो खुल जाएगी। और पहला काम जीसस ने आते ही क्या करना है कि वो इनको कत्ल करेगा, यानी ये जिंदा कौमों की अदालत होगी
जो ज़ियाफ़त है
जी, उसमें ये सारी फिर हवा के परिंदों को दावत दी जाएगी, तो वो उनको सो ये हम इस तरह है कि इसी में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आउटलाइन अच्छी है आज हमने देख ली।
तो किसको जीसस जब आएंगे माउंट ऑलिव पे, तो फिर वो किसको कत्ल करने का,
वो जबूर 83 और इज़ेकियल 38 और 39 में इन कौमों के नाम लिखे हुए हैं जो फौजी हैं। इसको कहते हैं ये कॉम्युनिस्ट और इस्लामिक कंट्रीज का एक आर्मी, और इनका ये क्या होता है, ये जो आपस में तजारत का, इसको क्या कहते हैं,
ट्रेड
का एक पैक होगा, क्योंकि डैनियल ने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक स्टैचू बताया है, और हम ऊपर नहीं जाते, वो कहता है कि इसके पांव जो हैं वो मिट्टी और लोहे के हैं। अब ये मिट्टी और लोहा आपस में मेल नहीं करता, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज की रवायात और इनके मजायब और क्या कल्चर, और लेकिन ये कुछ अरसे के लिए इनका ताद होगा, तो ये उसको रिलेट के,
ये इनका अलायंस है,
अलायंस ये सही वर्ड जो
है, कम्युनिस्ट लोगों के साथ।
हाँ जी,
जो अभी हम देख रहे हैं इस वक्त आज की तारीख में दुनिया में स्टेज सेट हो गया है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है, सऊदी अरब का ईरान के साथ सुलह होनी, और फिर इनका पाकिस्तान के अलायंस के साथ मिलके, तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री चाइना है, तो वो चाइना का ब्लॉक बन गया है, वो सारे के सारे चाइना के ब्लॉक में चले गए हैं इकोनॉमी के वाले से।
शराय रेशम जो है वो यूज होगी, और ये जो आपका ये क्या
सिल्क रोड सी पैक जो है,
ये भी उसका एक
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
तो ये सारी बाइबल में है, बड़ी हैरानगी, यानी दिल ही खुश हो जाता है, ये सब कुछ जो हो रहा है ना कलाम के मुताबिक हो रहा है। तो कहाँ थी बात हो रही
जी, मसीह खुदावन जो है वो
हाँ।
जब जाहिरी तौर पर आते हैं,
इज़ेकियल का वाला क्या है,
38 चैप्टर और 39
जी। सो हम थोड़ा सा अगर वापस,
ये तो नीचे का हाल मोटा मोटा,
ये हमने देख लिया कि दुनिया में स्टेज सेट हो गई, मुखालफे मसीह आ गया, مخالف مسیح نے ایک امن معاہدہ باندھ لیا اور 3.5 سال تک وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا امن کا ایک آرٹیفیشل،
اور وہاں جا کے اس پیس ٹریٹی کو وہ 3.5 سال کے بعد توڑ دے گا اور اپنا ہیڈ کوارٹر یروشلم میں،
جہاں پہ وہ پھر وہ پیشن گوئی جو ہے وہ مکروہ چیز پاک مقام میں جو ہے
وہ ہاں کھڑے ہوئے دیکھو.
ہاں تو اس دورانیے میں زمین میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مسیح خداوند کی طرف سے بھیجے گئے، خدا کی طرف سے 2 گواہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ 144,000
یہودیوں
کا 12,000
کو قبیلوں میں سے لے کے
تو ان کو پھر وہ
پلاس جو بورن اگین نیچر
ہے، اور جو وہ اس تمثیل کے مطابق جو 10 کماریوں میں سے 5 رہ گئی تھی یہ وہ کیٹیگری ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے.
جی سوری، اس میں پرسنٹیج کی نہیں ہے، جتنے تیار ہو.
ہاں جو تیار. جی جی، تو وہ جو 3 کیٹیگریز ہیں کہ ایک تو یہودی ہیں، ایک وہ جو رہ گئے تھے، اور ایک وہ ملحد قومیں جو ہیں باقی کی ساری وہ ہیں. تو جب یہ کلیسیا اٹھائی گئی ہے تو اس وقت آسمان پر کیا صورتحال چل رہی ہے؟
واؤ، اس وقت، اور یہ اس کو الگ سٹڈی کر لیں یا اسی میں چلے. دیکھیں جی، پہلی چیز جو مر گئے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بھی جو مسیح پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے اٹھائے گئے، جیسے کہ زبور 68:18، افسیوں 4:8 کے مطابق، جن کو یسوع جب سینڈ ہوا ساؤتھ فرمایا تو ان کو تو لے گیا، وہ تو ابھی بھی آسمان پہ ہے، اور ابھی وہ بلیورز جو مر رہے ہیں اور یسوع کے آنے تک، پوشیدہ آمد تک، ان کی بھی روحیں اوپر جائیں گی. ٹھیک ہے، تو جب یسوع نے آنا ہے، کب آنا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. متی 24:36 میں جو اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ. اب
مطلب پاک لوگ جو سو گئے مسیح میں
جی،
ان کی روحیں اس وقت کہاں ہیں؟
وہ یسوع کے پاس ہیں، کیونکہ ڈیسٹینیشن دو ہی ہیں،
بھی ساتھ ہوں گے.
وہ ساری جتنے بھی یسوع کے آنے تک، آخری بندہ جب وہ آ رہا ہوگا اور وہ مر رہے ہوں گے، تو ان کی بھی روحیں ساتھ لے.
اچھا، ایک ہم نے لاسٹ ٹائم سٹڈی کی تھی کہ پہلے تو جو تسلنیکیوں میں لکھا ہے 4:16 میں کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں سوئے وہ جی اٹھیں گے،
اور پھر ہم
جو زندہ ہوں گے
ان کے ساتھ
مل کر
بادلوں پر یسوع کا استقبال کریں گے. یسوع ہمارا نہیں کرے، ہم اٹھا لیں.
تو ان کی ہم آپ نے دیکھا تھا پچھلی مرتبہ کہ ان کی روحیں مسیح کے پاس ہیں،
جسم ان کے
یہاں پر ہیں،
اور وہ جلالی اس میں وہ اٹھائے جائیں گے،
مسیح روحوں کو بھیج رہے ہیں، اور اسی وقت وہ جلالی بدن بن جائیں گے.
جس طرح
اور وہ پھر وہ پہلے
جس طرح ایک حزقیل کو کہا گیا ان ہڈیوں پہ نبوت کر، جہاں جہاں تھی کڑل کڑل کرتی آپس میں جڑ گئی، اور پھر اس نے کہا کلام کر کہ ان پہ ماس آ جائے، ٹھک ٹھک آ گیا، اور کیا روح ان میں آ جائے، تو دم آ جائے تو آ جائے. تو یہ خداوند کے نزدیک کوئی جل گیا ہے، کوئی کیا اس کو کہتے ہیں، کریمنیٹ کر دیا ہے، اور کوئی
راکھ بن گیا،
درند پرند سب کٹھے ہو جائیں گے، اور اسی طرح گناہگار بھی کٹھے ہو جائیں گے، ان کی بھی عدالت ہے نا. تو وہ الگ ٹاپک ہے. جی، تو سیکوینس کو ذرا آپ
سیکوینس میں یہ ہم نے دیکھا کہ جب کلیسیا اٹھائی جا چکی ہے
جی،
اس وقت زمین پہ تو جو ہم نے دیکھا جو ہو رہا ہے، تو آسمان میں جو کلیسیا مسیح کے پاس ہے
جی،
وہاں پر کیا کچھ اس ہو رہا ہوگا؟
دیکھیں کلام، اب ہم کلیسیا پہ آ جائیں جی، ریپچر سے ہے سر
جی،
ہم ادھر پہنچ گئے
جی. کلیسیا کا ہی ریپچر ہوا نا،
کلیسیا کا ہو گیا، ٹھیک ہے سوری. تو اب پہلا ایونٹ جو ہوگا، نیچے کا ہم نے نظارہ دیکھا، یہ بڑی ڈیٹیل میں کریں گے ثبوتوں میں. اب جو کیا ہوگا، پہلی چیز ان کے وہ بدن جی، مطلب وہ جلالی ہو گئے، اور پھر جو زندہ ہوں گے، پہلا کرنتیوں اس کا 15 باب اور اس کی 52 اور 53 آیت میں کہ بھائیو میں تمہیں ایک بھید کی بات بتاتا ہوں, ہم سب تو نہیں مریں گے لیکن ہم سب آنکھ کے جھپک
پلک جھپکنے
بدل جائیں گے. جب یہ سسٹم ہو جائے گا تو جناب بلیورز کی ججمنٹ آ جائے گی, بھائی کہاں لکھا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں بلیورز کی کیڑی ججمنٹ ہے, یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس کے وسیلہ جس کی وجہ سے ایماندار جو ہیں نا بڑے ریلیکس ہوئے ہوئے ہیں, کون سی عدالت, کون سی چرچ, کون سا یہ وہ نا. دیکھیں اب اس میں ہم چلیں گے, اب حوالے کچھ پڑھنے پڑیں گے اور وہ یہ ہے کہ یہ اب ہم ایمانداروں کی بلیورز یا چرچ کی یا بلیورز کی ججمنٹ, کلیسیا کی, ٹھیک ہے. دوسرا کرنتھیوں 5:10 میں یہ اب کوئی ہمیں پڑھے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے. ادھر لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے.
دوسرا کرنتھیوں
5:10 اس میں یہ لکھا ہے
کلیسیا کی عدالت.
ہاں جی اب آپ پلیز بتا دیں کیا
دوسرا کرنتھیوں 5:10 ہمارا سبجیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں بلیورز ججمنٹ, کہ جو کلیسیا اٹھائی گئی ہے جو ریپچر ہوا ہے اس کے لیے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت کے عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے, تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں, خواہ بھلے ہوں خواہ برے.
تو جب پالوس کہہ رہا ہے ہم سب, تو اس کا مطلب ہے بلیورز ہیں. پھر کچھ اور والے رومیوں 14:12 آیت میں دیکھیں کہ یہ ایمانداروں کے لیے لکھا ہوا ہے. پہلے تو ہم اس بات کو کلیئر کریں, تو نیچے تو ہیں جی نیچے تو چل رہا ہوگا کام
جی,
بعد میں اسٹڈی کے اوپر یہ کچھ چل رہا ہے.
سو نیچے ٹریبلیشن چل رہی ہے اور اوپر بلیورز ججمنٹ چل رہی ہے,
اور یہ بڑا خوشی کا دن ہوگا ان کے لیے
جی. سو یہ بیسیکلی بلیورز ججمنٹ جو ہے
جی,
یہ خوشی کا یہ
بہت اچھا ایمانداروں کا لیے یہ خوشی کا دن ہوگا, کیونکہ رومیو میں لکھا ہے کہ مخلوقات کراتی ہے, یہ بلیورز کے لیے ہے نا
جی.
ہاں تو وہ ہم ادھر پہلے اس کو آپ نے پڑھ لیا, پھر جی. رومیو آپ پڑھ دیں گے 14:12 اور ساتھ ہی لکھ لیں پہلا پترس کا خط 4:17 آیت. یہ کم از کم 3 ورسز ٹھیک ہے نا
جی.
ہمیں پتہ لگ جائے گی واقعی ہونی
4:17. سو رومیو 14 اور اس کی 12 آیت میں یوں لکھا ہے, بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا.
ہم بس ہم میں سے
ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا.
ٹھیک ہے,
یہ نہیں لکھا کہ ایماندار نہیں دیں گے,
تو یہ ایمانداروں کے لیے لکھا. چلو چلے پھر آپ
پہلا پترس 4:17
ہاں اس میں جواب مل جائے گا ہمیں.
پہلا پترس اور اس کا 4 اور اس کی 17 آیت, کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو, اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے.
سو عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی تو بے دینوں کا کیا ٹھکانا جی. ٹھیک ہے, سو یہ ہم نے یہ کنفرم ہو گئی. اور ایک اور ورس سپورٹنگ لے لیں تو وہ پڑھ دینا یا دیکھ لیں
جی.
ایکس امال 24:15 میں یہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں, جو لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ ایماندار تو یسوع میں آ گئے ہیں تو ان پہ تو سزا کا حکم نہیں ہے. یہ عدالت جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ یہ سزا نہیں ہے, اس میں
جزا
جزا اجر کا پانا یا کھو دینا, یہ نہیں کہ ان کی پھر وہ جنم میں جاؤ. ٹھیک ہے, اس کو سزا یا جزا,
ریوارڈ یا پنشمنٹ ہوتا نا, تو یہ ریوارڈز ہیں بیسیکلی,
ریوارڈز ہیں. اور یہ ججمنٹ ریوارڈز کا ملنا یا ریوارڈ का
खो देना.
कैटेगरीज ऑफ रिवॉर्ड इज बेटर वर्ड, बिकॉज़ रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे हर एक को, लेकिन उसकी कैटेगरीज होंगी. किसी को हायर लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा, किसी को लोअर लेवल का, लेकिन कैटेगरीज ऑफ रिवॉर्ड्स होंगी कि किसको क्या मिलेगा.
बात यह है कि पहला करंथियों 3:10-15 में ये भी जो आपने सवाल किया बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बुनियाद यीशु मसीह है, और वो हम जो बिलीवर्स हैं उस बुनियाद पे हमारे काम क्या हैं. आया वो घास फूस और लकड़ी के हैं या सोना चांदी और कीमती पत्थर. तो आग जो आएगी, आग मीन्स जजमेंट जो आएगी, वो हर एक का काम परख लेगी, और जिसका काम बच जाएगा वो अजर पाएगा. जिस तरह सोना चांदी, ये हम आगे देख लेंगे, सोना चांदी और कीमती पत्थर,
ये वो किन चीजों को तस्वीर देगी,
किस देगी, और ये घास फूस और लकड़ी.
तीन बाब और उसकी 10-15
और लेकिन लिखा है कि वो उसका काम जल जाएगा, वो खुद तो बच जाएगा मगर
जलते
जलते.
तो
जलते जलते
तो हमने जी
जलते जलते का क्या मतलब है,
ये मेरे ख्याल रिवार्ड पार्ट टू में डिस्कस कर ले.
तो रिवार्ड आप बोल दे फिर.